अच्छा, बहुत से सवाल चेहरे के पर्दे के बारे में हैं। बात यह है कि एक हदीस है, इस्तफ्त कल्बक वलव अफतू का, अपने दिल से फतवा लो, खा लोग फतवा दे दें। तो मुझसे फतवा न लें, जो मुझे समझ में आता था वो मैंने आपको बता दिया। क्योंकि किसी ने लिखा है कि जो दो राय पाई जाती हैं, आप दूसरी राय के भी दलाल दें। मेरे पास तो कोई दलाल नहीं है दूसरी राय के, जिसके पास है वो आके दे दे। मेरे पास जो दलाल थे वो मैंने आपके सामने रख दिए। जो मुझको समझ में आया है मैं उस पर अमल कर लेती हूँ। लिहाजा हर एक का मामला उसके रब के साथ है, इसलिए इस मौजू पर इससे ज़्यादा मजीद बहस का फ़ायदा नहीं होगा। किसी ने लिखा है कि मगरिब में चेहरे का पर्दा करना तकरीबन नामुमकिन है, अगर हम करते हैं तो अपने आप को ख़तरे में डालने की बात है, क्योंकि लोग वहाँ ऐसे लिबास से खौफ ज़दा हैं, इसलिए वो बड़ा सख्त रवैया रखते हैं जिसकी वजह से बाहर निकलना मुश्किल है। ऐसी हालत में हम क्या करें? मैं खुद मगरिब में 4 साल यूनिवर्सिटी में पढ़ी हूँ और मेरा यही हुलिया होता था जो यहाँ होता है, कोई फ़र्क नहीं था इस हुलिये में। ना मैंने यहाँ कहीं बहुत ज़्यादा किया, ना वहाँ जाके इसमें कोई कमी की। मुझे आज तक कोई ख़तरा नहीं हुआ, कोई कमेंट उनकी तरफ से नहीं सुनना पड़ा। हाँ, सुनना पड़ा है तो वहाँ भी अपने ही पाकिस्तानी भाइयों से सुनना पड़ा है, मुसलमानों से सुना है। ये सब वहम गुमान की बातें हैं कि ख़तरे में डालने की बात है। किस ख़तरे में डालना है वहाँ? और फिर यह है कि लोग ऐसे लिबास से खौफ ज़दा हैं। मैं कभी ये नहीं था कि मैं लिबास ऐसा पहन के कभी घर में ही बैठी रही थी। रोज़ाना यूनिवर्सिटी में जाती थी, बाज़ार से गुजरती थी, मॉल्स में जाती थी, जहाँ कहीं ज़रूरत का कोई काम होता। ट्रैवलिंग भी वहाँ बहुत की है, वॉक भी वहाँ बहुत की है, अकेले भी सफ़र किया है, अकेले भी वॉक की है बहुत, यूनिवर्सिटी से घर और घर से यूनिवर्सिटी। क्योंकि जब हमारी बच्ची पैदा हुई तो हम दोनों हस्बैंड वाइफ जो थे बारियां देते थे, एक जाता था यूनिवर्सिटी वो आता, दूसरा जाता, तो हम इकट्ठे नहीं जा सकते थे। तो मुझे तो कभी कोई ख़तरा महसूस नहीं हुआ। और फिर सिर्फ ये नहीं कि किसी एक मखसूस एरिया में, बहुत सारे शहरों में जाना हुआ। ये सब अपने दिल के खौफ हैं जो बाहर आते हैं। जब दिल कन्विंस हो जाए तो कोई खौफ खौफ नहीं रहता। अब आप देखिए कि एक है महरम, एक है नामहरम। मोटी सी नामहरम की डेफिनेशन ये है कि जिससे निकाह हो सके औरत का, जिससे औरत की शादी हो सकती है ना, वो औरत के लिए एक लिहाज से खतरे की ही जगह है, उसकी इज्जत इसमत के एतबार से। लिहाजा इस्लाम ने औरत को प्रोटेक्ट किया है कि ऐसे लोगों की नज़रों में ना आए, ऐसे लोगों के पास ना जाए कि जहाँ उसकी इज्जत पर कोई हर्फ आए, या उसको कोई ब्लैकमेल करे, या उसको कोई हरासमेंट हो। आपको पता है कि इस वक्त वेस्ट में जो हो रही है तहकीक के औरतों के ऊपर जो सेक्सुअल हरासमेंट है, और जिसमें ऊपर से नीचे तक के ऑफिसेस, नाम लेने की ज़रूरत ही नहीं है, सबको मालूम है स्कैंडल जो अखबारों वगैरह में आते रहे हैं, तो इस पर बाकायदा रिसर्च हो रही है। और पिछले दिनों एक अखबार में मैंने पढ़ा था, मैंने वो अखबार रखी भी थी कहीं कि मैं इस मौके पर आपको उसकी हेडलाइंस ही कम अज़ कम दिखाऊंगी। पूरा सर्वे था वो पाकिस्तानी अखबार में, यहाँ भी जो ऑफिस वगैरह की, जहाँ औरतें मर्द इकट्ठे काम करते हैं, वहाँ की जो सूरत हाल है। तो उसमें अल्टीमेटली यही एडवाइस किया जा रहा है, हल ये निकाला जा रहा है कि औरतें सादा लिबास पहने, औरतें खुद को ढांपते हैं, औरतें ये एक्सपोज ना करें, औरतें ये ना करें। तो इस्लाम ही के ऊपर सारा इतराज़ क्यों है कि अगर उसने औरत को जीनत से मना नहीं किया, ये नहीं कहा कि जीनत करो ना, या उसे खूबसूरत बनना नहीं चाहिए, उसकी इस हिस को दबाया नहीं, सिर्फ चैनलाइज किया है, लिमिट्स में रखा है। इसीलिए तो देखते हैं कि हजरत उसामा को जब चोट लगती तो हुजूर फरमाते हैं, अगर उसामा बेटी होता हम इसको अच्छे कपड़े पहनाते, अच्छा जेवर पहनाते। कुरान पाक में आगे आप पढ़ेंगे कि अफम युनश्शअ फिल हिलियति, औरत की सिफत क्या है? वो जो जेवरात में पाली जाती। ना जेवर मना है, ना कपड़ा मना है, ना मेकअप मना है, जब तक लिमिट्स में हो इंसान। लिमिट क्रॉस करना सिर्फ इस लिहाज से नहीं कि तबर्रुज में, बल्कि माल के एतबार से भी। आप देखें कि एक शख्स की वुस्सत नहीं है 100 रुपए की करीम खरीदने की भी, लेकिन आपने देखा कि सैकड़ों और हजारों रुपए, करोड़ों रुपए हमारे मुल्क के जर मुबादला के सिर्फ महंगा मेकअप खरीदने में इस्तेमाल हो जाते हैं। हमारे जैसा मकरूज मुल्क करोड़ों डॉलर सिर्फ किस पे खर्च करता है? मेकअप के सामान पर, और वो सब बहाने के लिए, यानी सफाई सुथराई और अपने आप को संवारना हुदूद के अंदर, लिमिट्स के अंदर, या हर औरत का हक है। और जायज़ तरीके से अगर औरत ये अपना हक पूरा करती है तो ये उसके लिए इबादत भी है। अल्लाह ताला खुद खूबसूरत है, खूबसूरती को पसंद करते हैं। इन्नल्लाह जमीलुन युहिब्बुल जमाल, जमाल अल्लाह ताला को पसंद है। अल्लाह ताला ने तरह तरह की खूबसूरत चीज़ें पैदा की, खूबसूरती इख्तियार करना मना नहीं, लेकिन ऐसी खूबसूरती जो इंसान को फितने में मुब्तला करे और माशरे के अंदर बेचैनी पैदा करे, इस्लाम उस चीज़ का कायल नहीं। अब देखिए कि किसी भी चीज़ पर पाबंदी क्यों लगाई गई है। मैंने आपको एक दफ़ा बताया था मकासद शरिया। मकासद शरिया क्या है? इंसान की जान की हिफाजत, माल की हिफाजत, अक़ल की हिफाजत, इज्जत की हिफाजत और दीन की हिफाजत, ठीक है ना? और ये सारी चीज़ें इंसान का हक है। जिंदा रहना भी हक है, इज्जत भी इंसान का हक है, इसी तरह दीन भी हक है, ऐसे ही माल भी इंसान की ज़रूरत है। और ये सब कुछ इंसान के पास होना चाहिए। कोई ऐसी चीज़ जो उससे ये हक छीने, इस्लाम उसको रोकता नहीं, ये नहीं करो। इसलिए चोरी को हराम किया, डाके को हराम किया, जिना को हराम किया, शराब को हराम किया, तबर्रुज को हराम किया कि औरत अपनी जेब व जीनत जाहिर करे। क्यों? इसलिए कि उसमें क्या क्या नुकसान है। मसलन आप देखें कि दीन का नुकसान है, अल्लाह ताला ने मना किया और एक औरत वो करती है तो दीन का नुकसान है, आखिरत में पूछी जाएगी। माल का नुकसान है, जितना ऊपर लगाने के लिए पैसा जाया हो रहा है उतना अंदर खाने के लिए भी इस्तेमाल कर लें तो स्किन बहुत अच्छी हो जाएगी, अगर प्रॉपर बैलेंस डाइट होगी तो। उसकी तरफ हमारे कितने फीसद की तवज्जो है कि हमारी बच्चियां प्रॉपर डाइट लें? वो तो डाइटिंग करनी है इसलिए वो तो वैसे ही मना है। प्रॉपर खाने का तरीका क्या है हमें नहीं मालूम, सेहतमंद रहने के राज उसूल क्या है वो हमको नहीं मालूम, इल्म है हमारे पास या नहीं उसकी कोई हमें परवाह नहीं। लेकिन दूसरी तरफ सिर्फ जाहरी चकाचौंध, सिर्फ जाहरी तौर पर शख्सियत को संवारने के लिए हजारों लाखों रुपए भी सर्व करके हमें चैन नहीं आता और एक के बाद एक चीज़ आजमाते रहते हैं। अब आप देखिए कि माल का कितना ज़िया है, क्या ये इसराफ में नहीं आता? एक एक एंटी एजिंग क्रीम जो है कितने कितने डॉलर की है। मेरी एक स्टूडेंट थी तो उसकी बहन वहाँ किसी स्टोर में काम करी और वो स्टोर भी इसका ही है, मेकअप वगैरह की चीज़ों, उसके कंपनीज के साथ भी डील रहती है तो बाकायदा सर्वे करते रहते हैं कंपनीज वाले कि लोगों का ट्रेंड क्या है, क्या और पेश किया जो लोग किस चीज़ पे जाते हैं। कहते हैं बाज़ अवक़ात बिल्कुल चीप सी चीज़ें होती हैं लेकिन महंगी से महंगी करके बेचते हैं और बड़े बड़े इश्तहार साथ लगाते हैं ताकि लोगों को ट्रैप किया जाए, हालांकि असर उसका कोई खास नहीं होता। फिर एक कंपटीशन चल पड़ा, और कल भी जैसे बात हो रही थी कि औरत के जहानत, काबिलियत, लियाकत, उसके अखलाक, उसके दीन, उसके खानदान, किसी चीज़ की कोई वैल्यू नहीं रही। सिर्फ अगर एक वैल्यूएबल चीज़ रहेगी तो वो हुस्न रह गया या हुस्न को मजीद निखारने का जिसको ज्यादा तरीका आता हो। और इस सब से औरत ठीक है शौहर के लिए जायज़ है, लेकिन शौहर के लिए भी वो क्या बन गई है? गुड़िया बन गई बस। यानी चाहे शौहर के लिए भी हो तो उसके भी एक लिमिट्स हैं कि औरत का काम सिर्फ सजना बनना और दूसरे के लिए बस एक खूबसूरत पीस, शो पीस बन के रह जाए, इससे आगे वो कोई चीज़ नहीं है, उसकी कोई जिम्मेदारियां नहीं है, उसको कुछ और नहीं करना, उसके अंदर कोई रूह नहीं है, कोई अकल नहीं है, कोई। सिर्फ हिजाब के मसले को महज हिजाब के साथ मत रिलेट कीजिए कि ये जो हिजाब है और पाबंदी है और औरतों को बंद कर दिया गया और बिल्कुल वो बाहर नहीं निकल सकती और विटामिन डी से महरूम रहे, धूप शूप ना लगे उनको, और ये नहीं है। बात यह है कि वह हिजाब क्यों, और अगर नहीं तो क्यों, वजह क्या है? तो पूरे दीन के उसमें रख के देखिए कि ये एक हिस्सा है और मुसलमान औरत की पहचान है। आपने आखिरी आयत में क्या पढ़ा? ज़ालिक अदना अय्यो रफना, कि ऐसे लिबास में मुसलमान हो रहा तो दूर से पहचानी जाए वो मुसलमान जा रही है। हिजाब और मुसलमान औरत लाजिम व मलजूम है, उसके बगैर उसका तसव्वुर ही नहीं। यानी औरत के इस्लाम का तसव्वुर किसके साथ है? उसके ड्रेस के साथ है। इसका यह मतलब नहीं कि सिर्फ ड्रेस आप पहन लें और बाकी अंदर से काले रहें, नहीं, अंदर को भी साफ करने की जरूरत है क्योंकि वो तो मकसूद है, लेकिन जितना वो अंदर जरूरी है इतना बाहर ये भी जरूरी है। मसलन एक आप बेहतरीन किस्म का खाना खा रहे हैं लेकिन जिस बर्तन में खा रहे हैं वो बाहर से मैला है तो आप नहीं खा सकते खाना। इसी तरह बेहतरीन किस्म का बर्तन है, खूबसूरत तरीन, लेकिन जो खाना है वो बदमज़ा है, आप नहीं खा सकते। तो खाने के लिए क्या ज़रूरी है? दोनों ही चीज़ें साफ़ हो, बाहर का बर्तन भी साफ़ हो और अंदर की चीज़ भी साफ़। इसी तरह दीन भी हमसे क्या मुतालबा करता है कि हम बाहर से भी मुसलमान नजर आए और अंदर से भी मुसलमान हो। कहीं ये नहीं कहा गया कि सिर्फ दिल का पर्दा होता है और जाहिर ना करो, और कहीं ये नहीं कहा गया जाहिर तो कर लो और दिल बेईमान रखो, नहीं, दोनों चीज़ें साथ साथ चलनी चाहिए। अब मसलन आप देखिए कि जैसे शराब के बारे में भी लोग कहते हैं कि कहाँ लिखा है हराम है, जैसे ये पर्दे के बारे में हर तरह तरह की हुज्जतें होती हैं ऐसे शराब के बारे में भी हुज्जतें होती हैं। मैं एक छोटा सा वाक्य आपको पढ़ के सुनाती हूँ और शायद एक यही वाक्य शराब की हुरमत के लिए काफी है, कोई कुरान की आयत ना सुनाई जाए, कोई हदीस ना सुनाई जाए, सिर्फ आप अपनी अकल से फैसला कर लीजिए। मैं एक शरीफ आदमी हूँ, चंद गलत किस्म के दोस्तों की रफाकत से शराब पीने का इत्तेफाक हुआ, इस दरमियान बदकिस्मती से अपनी 17 साल बच्ची से बदफेली का मर्तकब हुआ। 4 महीने गुजरने के बाद मालूम हुआ कि बच्ची हामला है। मैंने खुद बच्ची से पूछा, बाप ने खुद बच्ची से पूछा तो बच्ची ने बताया कि ये आपका काम है। आप यकीन करें, ये तहरीर उस शख्स की लिखी हुई है जो मेरे सामने इस वक्त, आप यकीन करें, सिर्फ मुझे इतना पता है कि मैंने कुछ शरारत की, मगर ये किस तरह हो गया मुझे कुछ याद नहीं। ये मुझे होश आने पर मेरी बच्ची ने बताया। अम्मा पूछती है, सवाल है, मेरे शौहर ने मेरे बच्ची के साथ ज्यादती की नशे की हालत में। इस बच्ची के अलावा 4 छोटे बच्चे हैं, शौहर के अलावा कोई हमारा ख्याल करने वाला नहीं। बन्नौरी टाउन वालों ने फतवा दिया है कि औरत हमेशा के लिए हराम हो गई है, फौरी तौर पर औरत को तलाक दे दीजिए, यानी बीवी को। आप सिर्फ मुझे इतना बताएं कि इस्लाम फितरी दीन है, कसूर नादानी मेरे शौहर की और सजा मुझे क्यों दी जा रही है? छोटे बच्चों वाली माँ तलाक लेकर इस दौर में क्या इज्जत की जिंदगी गुजारेगी? मेरा और शौहर का इतने सालों का साथ है, क्या इस वजह से टूट जाएगा? आप बताइए। सिर्फ एक वाक्या, आप अपनी अकल से फैसला कर लें कि शराब हलाल है, होनी चाहिए हलाल जो किए हुए हैं लोग, इसलिए कि अकल का नुकसान है, हलाल हराम की तमीज मिट जाती है। इस्लाम ने जिस चीज पर भी पाबंदी लगाई है वो किसी जिद में नहीं लगाई, किसी को सताने के लिए नहीं लगाई, किसी वजह से लगाई। कभी भी कोई आपको ये कहे ये क्यों और वो क्यों, तो सिर्फ क्यों का जवाब, किसी दरख्त का पत्ता सूख गया तो आप ये ना कहिए कि पत्ता क्यों सूख गया, ये देखिए कि वजह क्या है, मौसम तो नहीं खजां का। कभी फैसला ना कीजिए किसी भी हुक्म पर इस्लाम के बदगुमान या बदजन ना होइए, ये देखिए क्यों। 5 मकासद शरिया को सामने रखिए। कोई भी चीज जिससे हराम किया गया है, रोका गया है, या जिसको हलाल किया गया है, उसके पीछे 5 वजूहात हैं कि दीन हमारी इज्जत बचाना चाहता है, माल बचाना चाहता है, अकल को संभालना चाहता है, जान को बचाना चाहता है। कत्ल क्यों हराम किया गया? जान बचे। रिश्वत क्यों हराम? डाका की चोरी क्यों हराम की गई? माल बचाना चाहता है। हिजाब क्यों? औरत की इज्जत बचाना चाहता है। और इसी तरह जान क्यों? जान इसलिए कि आपको पता है कि बहुत से कत्ल किस लिए होते हैं। आप कभी सर्वे करके देख, कत्ल की वजूहात मालूम कीजिए, उसमें से एक बड़ा प्रोपोर्शन क्या होगा? जेलसी। एक चाहता है इस लड़की से मैं शादी करूं, दूसरा कहता है मैं भी इसी से ही करूंगा। वो उसको मार डाले, जिस तरह हाबील काबील के वाक्य में यही वजह बताई जाती। जो भी कीमती तरीन चीज होती है इस्लाम उसको संभालना चाहता है। तो बात मैं ये कर रही थी कि जो महरम और नामहरम की जो पहचान दी गई है बुनियादी तौर पर, वो क्या है कि करीबी रिश्तों को अल्लाह ताला ने महरम कर दिया, हराम कर दिया कि तुम हुर्रिमत अलैकुम उम्महातुकुम व बनातुकुम, और वो जो 5वें पारे के आखिर में आता है, ये औरतें तुम पे हराम है। क्यों? ताकि ये औरतें महफूज रहें, वरना अपने बाप और भाइयों के हाथों महफूज ना रहें, जैसे वेस्ट में हो रहा है इंसेस्ट जो है वहाँ, और हमारे यहाँ भी ढके छुपे अल्लाह की पनाह जो बहुत सारी कच्ची बस्तियों वगैरह के वाकयात अगर आप सुनने को देखें तो रूह कांप उठती है। अब ये है कि मर्द और औरत को तन्हाई में मिलने से क्यों रोका गया? औरत को महफूज रखने के, मर्द का क्या जाता है, क्या नुकसान हो जाएगा? ज्यादा से ज्यादा उसका नुकसान तो औरत का होता है ना। तो जिस चीज के चुराए जाने का डर हो उसी को प्रोटेक्ट किया जाता है, तो ये जुल्म नहीं है हम पर। अच्छा, दूसरी सूरत क्या हो सकती थी? ये हो सकती थी कि हमको भी मर्द ही बना दिया जाता, और ना हमारे अंदर नजाकत होती, ना लताफत होती, ना हुस्न होता, ना कुछ अट्रैक्शन होती, तो फिर जिंदगी में क्या हुस्न होता? वजूद जन से है तस्वीर कायनात में रंग, दुनिया की रौनक है औरत, लेकिन ये रौनक हर एक के लिए नहीं है, ये रौनक महफूज रौनक है। ये खूबसूरती वफा के अंदर है, हया के अंदर है, और ये हर औरत का राइट है। ये हिजाब जो है ये मुसीबत नहीं है, ये राइट है औरत का कि खुद को प्रोटेक्ट करे। कौन होता है कोई, चाहे मेरा बाप हो या शौहर हो या कोई और हो, जो मुझे मेरे इस हक से रोके? औरतें हर तरह के हकूक का मुतालबा कर रही हैं, लेकिन अपने आप को ढांकने के हक का मुतालबा कोई नहीं है। जैसे कल भी मैंने मिसाल दी थी कि एक पाव गोश्त तो ढांक के रखते हैं हम, मक्खियां ना बैठे इस पर, और लोगों की खबीस नजरें हम पे पड़े, और हमको हक ना दिया जाए कि ढांक के खुद को रखें, छुपा के रखें। तो ये असल में सोच की बात है। अच्छा, अब आप देखिए कि अल्लाह ताला ने, मैं कल भी जाके गौर कर रही थी इसको, कि इतने सख्त लफ्ज क्यों आए हैं देवर के बारे में। इसलिए कि शौहर का दिल भी अपने भाइयों के बारे में बहुत हद तक नरम होता है और कंसिडरेट होता है, और फिर उसमें खतरा भी होता है बाजू का, जैसे कल भी वो वाक्य आपने सुना। तो इसमें भी दरअसल औरत ही को प्रोटेक्ट किया, औरत को आजादी दी गई। और ये जो कल कंबाइंड फैमिली सिस्टम की बात हो रही थी, इस्लाम मिलजुल कर रहने से मना नहीं करता, लेकिन प्राइवेसी लाजम है। बिल्कुल हक नहीं है ना महरम किसी रिश्तेदार को कि वो बगैर इजाजत या बगैर शौहर की मौजूदगी में, चाहे वो देवर ही क्यों ना, या बगैर इजाजत वो इंट्रूड करे किसी के कमरे में या बेडरूम में या लिविंग रूम में या लिविंग एरिया में। अगर आना हो, क्या कहा गया, इजाजत लेकर आओ, ताकि औरत की अपनी आजादी रहे। और अगर औरत निकलती है तो उन लिमिट्स के साथ निकले, ताकि न सताई जाए, अपना आराम से आसानी से काम कर लें और वो ऐसे झमेलों में ना पड़े। आप देखें कि जब किसी भी लड़के और लड़की की इन्वॉल्वमेंट होती है नाजायज तरीके से, चाहे छोटे लेवल की हो या बड़े, या टेलीफोन पे हो या वैसे, तो आप देखिए कि काम से ध्यान कितना बट जाता है, पढ़ाइयाँ छूट जाती हैं बच्चों की, क्योंकि ध्यान कहीं और लग गया। घरों में फिर फसाद शुरू हो गए, माँ अपने भतीजे के साथ ब्याहना चाहती, वो उसके साथ ब्याहना चाहता है, अब वो चपकलस चल रही है, लड़ाइयाँ झगड़े आपस में घर में चकचक हो रही है रोज, हम वहाँ रिश्ता नहीं देंगे, वो हमारे लेवल का नहीं, वो हमारी बरादरी का नहीं। हो ये जितने भी हमारे यहाँ इस किस्म के नफसियाती मसले पैदा हो गए, कभी सोचा हमने कि इसके पीछे वजह क्या थी? हमने खुद अल्लाह के कानून पामाल किए, तोड़े, रौंदे, और बाज़ुकात बेसमझी में जब माँ बाप तंग आके ऐसी बच्चियों की शादियां कर देते हैं, चंद दिन के बाद वापस आ जाती हैं कि अब रह नहीं सकते वहाँ। माँ बाप को तो पहले ही पता था नहीं रह सकते, लेकिन अब बजिद है कि वहीं जाना है। तो जब से हमारे यहाँ यानी मुसलमान माशरे के अंदर ये सारी हदूद टूटी हैं, क्या मसाइल कम हुए हैं या बढ़े हैं? बढ़ गए हैं, बेतहाशा बढ़ गए, नफसियाती मरीज बनते चले जा रहे हैं। अच्छा, फिर आप देखें बहुत सी खवातीन को परेशानी अजवाजी जिंदगी में क्यों होती है? इसलिए कि शौहर उनको छोड़कर औरों की तरफ मायल हो गए, एक में इंटरेस्ट शो किया, उसको ब्याह लाए, अब वो नजरों से उतर गई, शौक पूरा हो गया, अब वो अंदर की खबासत तो जा नहीं रही, अब वो किसी और की तलाश में निकल खड़े हुए हैं। और फिर ये कि सस्ता है, आम है सब कुछ, तो हमें इस पर पूरी हमदर्दी से गौर करना होगा, एतराज या नफरत या एक रेजिस्टेंस के उसके साथ नहीं, क्योंकि इतना ज्यादा प्रोपेगेंडा हो चुका है हिजाब के खिलाफ कि हम खुद सुनने को तैयार नहीं होते कि कोई ये कहे तो सही। और एहसास यानी बड़ी हमदर्दियां जीती गई है ना औरत की, कि ये तुम पे जुल्म हो रहा है, तुमको बांध के और अंदर छुपा के, बाहर आओ। भी किसके लिए बाहर आओ? हमें क्या मिलेगा उस बाहर आने से? चंद तारीफी नजरें, उससे क्या मिलेगा? यानी जब कोई शख्स अपने आप को लोगों के लिए खूबसूरत बना के मार्केट में घुमाता है, हासिल क्या होता है? गौर तो करें हम। अल्लाह की रजा, जन्नत, वो तो हदीस साफ बुखारी मुस्लिम की, जन्नत की खुशबू हराम कर दी गई मायलात और ममीलात के लिए, जो खुद भी मायल और दूसरों को मायल करें। और दिलों का चैन किस तरह रुखसत हो जाता है? आप भी इसी माशरे के अंदर रहते हैं, आपको भी मालूम होगा बहुत से ऐसे वाकयात के, बीवी किसी की है, दिलचस्पी किसी और में है, घर में दिल ही नहीं लग रहा, शादी में किसी के साथ बंधे हुए हैं, दिल कहीं और अटका हुआ है। क्यों हो रहा है ये सब कुछ? क्यों घरों के चैन रुखसत है? इसलिए कि हमने खुद ही इन सब चीज़ों को जायज़ कर लिया। और यानी नऊज़ बिल्ला ये नहीं कि हम सबको बुरी नीयत से देख रहे हैं, मैंने कल भी कहा था कि हो सकता है आपके दिल में कोई बुरा ख्याल ना हो, बुराई ना हो, लेकिन लोगों की नज़रों का क्या करेंगे, उनको कैसे पाक करेंगे आप? सहाबा कराम को क्यों कहा गया अज़वाज मुतहरात से बात करो तो हिजाब के पीछे से करो? क्यों? वजह क्या बताई गई थी? ज़ालिकुम अतहरु लिकुलूबिकुम व कुलूबिहिन, ये बात ज्यादा पाकीजा है तुम्हारे दिलों के लिए और उनके दिलों के, क्योंकि एक फासला आ जाएगा ना, एक डिस्टेंस आ जाएगा, एक रुकावट आ जाएगी बीच में। एक और चीज भी याद रखिए कि एक लिबास है घर से बाहर निकलने का, जैसे जिलबाब और ये सब कहा गया, एक है घर के अंदर जैसे रिश्तेदार हैं ना महरम लेकिन रिश्तेदार हैं, तो वहां के लिए जो हमें चीज अहादीस वगैरह से मिलती है, उसमें बसा औकात कुछ पाबंदियां नरम हैं, यानी हंसी मजाक वगैरह तो वो नहीं होगा जो किसी भी नामहरम से नहीं होता, चाहे देवर ही हो। बाज़ुकात ये होता है कि ख्वातीन, हमारे यहाँ पंजाब में एक रिवाज है, जब शादी होती है दुल्हन की, तो दुल्हन के यहाँ घुटने पर ला के देवर को बिठाया जाता है बाज़ुकात। जी हाँ, जो छोटा होता है ना शोहर से उसको, और सर पे हाथ फेरना और फिजिकली टच करना, ये कोई बुराई समझी नहीं जाती, बहुत किस्म के फजूल किस्म के रिवाज मौजूद हैं, लेकिन इस्लाम इसको रिकमेंड नहीं करता। अब आप देखें कि बाज़ुकात ऐसी मजबूरियां भी होती हैं कि जैसे सास फौत हो गई, बहू को देवरों को भी देखना पड़ रहा है, जवान हो रहे हैं बच्चे, ये सब कुछ पालने पड़ते हैं बाज़ुकात, बहुत छोटे बच्चे होते हैं, उनको बच्चों की तरह उनको ब्रॉटअप किया जाता है, तो ऐसी सूरत में आप देखें कि एक लिमिट के साथ वो पाबंदी नजर नहीं आती जो घर से बाहर के लिए एक पाबंदी है। मसलन आप देखें कि हजरत उम्मे हानी के बारे में आता है, आपकी चचाजात बहन थी और कजन लगती है एक तरह से, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उनके चेहरे के पर्दे के बारे में नहीं मिलता। इससे क्या पता चलता कि जैसे घर के अंदर हैं और उम्र रसीदा हैं, यानी एक तो ना यंग गर्ल्स उनका और तरह का होगा, लेकिन जो बड़ी उम्र की खवातीन हैं उनका और होगा। तो के हया के दायरे में रहते हुए अगर यानी कि रिश्तेदारों के अंदर बिल्कुल ही काट के ना रख दिया जाए, बिल्कुल ही एक दूसरे से मेल मिलाप ना छोड़ दिया जाए, लेकिन याद रखिए कि नामहरम बहरहाल चाहे कजन ही हों, मेकअप और ज्वेलरी और खूबसूरत लिबास और उसके साथ नहीं, घर के अंदर एक मामूली चादर के साथ, जैसे जो सी थ्रू ना हो, जो सब कुछ जाहिर ना करती हो, तो उसमें जैसे खाना रख दिया, रिश्तेदार कोई आया है या सर्व कर दिया या उठा दिया है, तो इसमें एक हद तक गुंजाइश निकलती है। फिर इसी तरह हजरत अस्मा जो थी वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साली थी, हजरत आयशा की बहन थी, तो इनके बारे में भी आता है कि वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने चेहरा और हाथ जो थे वो खुले होते थे आखिर वक्त तक। वो जो इब्ने उम्मे मक्तूम के हाँ इद्दत गुजारने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक खातून को कहा था, दूसरी जगह नहीं कहा कि वहाँ बहुत लोग आते जाते हैं। तो यूँ मालूम होता है कि जैसे घर के अंदर के जो नामहरम हैं उनसे नस्बतन पाबंदी है तो सही, ये नहीं कहा कि उनके सामने जीरत का इजहार करो, लेकिन वो जो बिल्कुल गैर अजनबी बाहर के लोग हैं उनके मुकाबले में नस्बतन नरम। ये जैसे घर में अगर नौकर मर्द काम कर रहे हैं तो बिल्कुल आप बुरका पहन के तो उनके साथ किचन में नहीं जाएंगे, लेकिन ये भी नहीं करेंगे कि गले में दुपट्टा डाल के जाएं। तो उसमें यह है कि मेकअप वगैरह ना हो, बाल ना नंगे हों, गला गर्दन और जिस्म झलकता नजर ना आए, ऐसे लिबास ना हो, तो एक नॉर्मल बगैर जीनत के कपड़े में अगर काम करवा रहे हैं तो वह एक मुख्तलिफ सूरत होती है। इसी तरह ये कि यंग गर्ल्स और फिर उम्र रसीदा खवातीन का फर्क आपने सूरत नूर में पढ़ा कि उनके लिए क्या हुक्म है कि जो शादी की उम्र से गुजर जाए तो कोई हर्ज नहीं अगर अपने लिबास उतार ले, और वो लिबास ये नहीं कि जिसम का अयदा न सियाब न सियाब का लफ्ज़ है, वहाँ लिबास का लफ्ज़ नहीं है, सियाब सौब सौब उस ऊपर वाले ही ओढ़नी या कपड़े के लिए कहा जा रहा है जो जिलबाब की शक्ल में हो सकता है, क्योंकि बूढ़ी उम्र की औरत जो अपने आप को संभाल ना सके वो चादर कहाँ से संभालेगी, तो उसका ड्रेस हल्का कर दिया गया। इसी तरह ये किसी ने कहा कि लोग कहते हैं कि जिलबाब अगर ऊपर से डालने वाली चादर है तो आंखें भी बंद करनी चाहिए, क्योंकि लोग आंखों पर बारीक कपड़ा और हाथों में ग्लव पहनते हैं और मोजे पहनते हैं, तो उसका सही मतलब समझा दे। इससे मैंने आपको अबू उबैदा की रिवायत जो है और इब्ने अब्बास की तफसीर जो है, उनसे जब ये पूछा गया तो उन्होंने चादर उठाई और इस तरह ओढ़ के दिखाई कि आंखें खुली थी, क्योंकि बहरहाल रास्ता देखना है, पढ़ना है, अगर एक हुदूद के अंदर ये सब है तो आपके लिए कहीं जाकर पढ़ना, सीखना, लिखना, लिखाना कोई भी चीज़ पर मुश्किल नहीं होती, आप कहीं भी मूव कर सकते हैं अपनी लिमिट्स के साथ। जी हाँ बिल्कुल, मुश्किलों में डालना मकसद नहीं, मुश्किलों से बचाना मकसद है। इसी तरह मसला ये कि अगर आप गाड़ी में हैं तो ज़ाहिर गाड़ी के ऊपर एक कवर आ जाता है, और अगर शीशा थोड़ा डार्क है तो उसमें अगर आपने बहुत अपने आप को नहीं भी बांधा हुआ हल्का सा खोल दिया है तो भी उसमें हर्ज नहीं है। अगर हाँ ये खतरा हो और ख़ासतौर पर जब इशारों के पास आप जाके रुकें, गाड़ी रोकें, फिर आप देखें कि लोग किस तरह, लोगों का और शुगल ही कौन ही सिवाय इसके कि आपकी गाड़ी में जाके और एक ऊपर से नीचे तक आपके सरापे को घूरें, तो ऐसी जगहों पर ख़ासतौर पर फिर एहतियात की ज़रूरत है। इसी तरह बाजार में, और याद रखिए कि सारे मामले में कहाँ क्या करना है, सबसे बड़ा इंडिकेटर औरत के अपने अंदर लगा हुआ है। दूसरों की नज़रों को पहचान अल्लाह ने ऐसी दी है कि इंसान उनको इग्नोर नहीं कर सकता। और याद रखिए कि ये जो कहते हैं ना चेहरे के पर्दे में इख्तलाफ है, इसमें कोई इख्तलाफ नहीं कि जहाँ फितना हो वहाँ औरत को ढांकना चाहिए, इसमें कोई इख्तलाफ नहीं। जो फ़र्क या रुख्सत है वो इस हद तक है कि जहाँ फितना ना हो वहाँ कुछ ना कुछ गुंजाइश मिलती है, लेकिन मेरे पास एज सच कोई ऐसे दलाइल नहीं है कि मैं आपको कहूँ कि इस बात की रुख्सत के ये और ये दलाइल है। मैंने जो कुछ पढ़ा है वो सिर्फ फतवा नहीं, तकवा का तकाजा यही है कि मैक्सिमम अपने आप को इंसान बचा कर रखे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मा तरक्तु बादी फितनतन अदर्रु अलर रिजाल मिन अन्निसा। सही बुखारी की रिवायत है, मेरे बाद तमाम फितनों से ज्यादा नुकसानदेह फितना मर्दों के लिए औरतों का फितना है। आप सब इसी माशरे के रहने वाले, आपने कभी देखा नहीं बाजार में कई दफ़ा गुजरते गुजरते भी गौर किया ना कि बाज़ औरतें महज हंस हंस के दुकानदारों से बात करती कि सौदा सस्ता कर दे। इस कदर तकलीफ होती है उस वक्त मुझे कि अपनी मुस्कुराहट बेच के, अपनी इज्जत बेच के इस चीज़ सस्ती ले रही हैं, इस चीज़ की क्या अहमियत है। कि जिसमें 1-2 रुपए कम हो जाएं। बाज़ औक़ात अजीब वो गरीब किस्म के नज़ारे नजर आते हैं। और फिर क्या हम अपने भाइयों के लिए, अपने शौहरों के लिए चाहेंगे कि उनसे दूसरी औरतें आके इस तरह के हंसी मजाक करें? हरगिज़ नहीं, कोई औरत ये पसंद नहीं करती। तो फिर ऐसी होछी हरकतें, और ख़ास तौर पर हिजाब पहनकर ऐसी हरकतें करना किस कदर तकलीफ दह चीज़ है। एक और हदीस है तिर्मिज़ी की, इन्नल मरअत औरतुन फ़इज़ा ख़रजत इस्तशरफ़हा शैतान व अक़रबु मा तकूनु बिरहमति रब्बिहा व हिय फ़ी क़ारि बैतिहा। औरत सतर है, इन्नल मरअत औरतुन, औरत का माना पीछे पढ़ा था ना, खतरे की चीज़ और खलल वाली। जब वो बाहर निकलती है तो शैतान उसे ताकता है, शैतान पीछे लग जाता है ताकि उसे अपना आला कार बनाए। और अल्लाह की रहमत से करीब तर वो उस वक्त होती है जब वो अपने घर के किसी गोशे में होती है, यानी जहाँ वो महफूज होती है। फिर आप देखें कि कहते हैं ना, वो एक शख्स ने निकाह का पैगाम कहीं भेजा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे पूछा कि क्या तुमने उसको देखा है? उसने कहा मैंने देखा नहीं। आपने कहा जाओ उसे देखो। वो पहुंची और उन्होंने कहा कि मैं देखना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि नहीं, क्या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है? अगर उन्होंने कहा है तो मैं देखने दूंगी, वरना अगर वहां से रुख्सत नहीं तो मैं देखने नहीं दे सकती। ये था औरतों का ईमान। तो अगर वो बाजार घूम फिर रही होती तो देख लेते कहीं भी। मैं इस बात पे बहुत सोचती हूँ कि कोई भी शख्स, कोई भी औरत जब नमाज पढ़ती है, रोजा रखती है, जिक्र करती है, दुनिया भर के काम करती है, तो यानी नेकी के जैसे, उसको कोई कुछ नहीं कहता। आखिर क्या वजह है कि अगर कोई औरत सर ढांपती है या जीनत छुपाती है तो सब हरकत में आ जाते हैं? ऐसा क्यों होता है? लोग आपका सारा दिन एक्सेप्ट कर लेंगे, कोई आपको नहीं मना करेगा नमाज क्यों पढ़ रहे हैं आप, लेकिन जो ही आप खुद को ढांपने लगे, आप खुद भी परेशान हैं और दूसरे भी परेशान हैं और सभी परेशान हैं कि ये हो क्या रहा है। और सारी मुखालफत इस पे है, सारा गुस्सा इस पे है, सारी परेशानी इस पे है। हालांकि अगर हम वाकई माशरे के खैरखा हैं, अगर हम माशरे की भलाई चाहते हैं, अगर हम माशरे से ये सारा इनजस्टिस ख़त्म करना चाहते हैं, तो हो नहीं सकता जब तक हम अल्लाह ताला के दिए हुए उसूलों को लेना और उनको सिर्फ ये कह के रद्द कर देना कि ये एक इंसान की तफसीर है और ये एक इंसान की बात है। अल्लाह को क्या जवाब देंगे? इसका हल सिर्फ ये कि अपने अंदर इतना ईमान और करेज पैदा करें कि पहाड़ भी आपसे टकराएं तो वो टूटे, आप ना टूटे। जो कुरान में है बता दिया गया, आगे सबका हिसाब अल्लाह के साथ है। अगर जवाब है उसके पास देने के लिए तो जैसा चाहे करें। जितना ज्यादा दिल में अल्लाह का खौफ और ईमान आएगा, उतने ही ये सब मुश्किलें आसान हो जाएंगी। लोगों की नजरें क्या चीज हैं? लोग कौन है हमारे, क्या बिगाड़ लेंगे हमारा? अगर मेरे तरफ कोई घूर के देखता है या मेरी तरफ कोई बुरी नजर से देख, अगर कोई मेरी इज्जत नहीं करता, सो वट, इससे क्या नुकसान है मेरा? सारी दुनिया भी मुखालिफ हो जाए मेरी तो मेरा क्या बिगड़ता है? कुछ बिगड़ता है? क्या लिखा हुआ है सूरत यासीन के शख्स के वाक्य में, या लई तकौमी आलमून बिमा गफर अली रब्बी वजालनी मिनल मुकरमीन। हमको यही फिक्र है ना कि हमारी इज्जत नहीं करेगा कोई, लेकिन अल्लाह के पास जो इज्जत है जो कभी खत्म होने वाली नहीं। واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك